हरे कृष्ण भक्तों का स्वागत है आज के क्लास में। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 15 श्लोक संख्या 18 और उसका जो है हमारे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे अतत अहरम अनुस्मृत्य महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय भवता प्राप्तो आवाम इह प्रभो ब्रह्मण्य भगवत भक्तः न आवासादितुम अर्हसि। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे आदधर्मं स्मृत्य महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय भवता प्राप्ता वावमिह प्रभो ब्राह्मण्यो भगवत भक्तो नावासादि तुमर्हसि। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे आतदहर अमृतमत्य महापुरुषो गोचरम अनुग्रहाय भवता प्राप्ता वावामिह प्रभो ब्रह्मणयो भगवत भक्तो नावासादि तुमर्हसि। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन अग्नं तमसि दुस्तरे आदतहर मनुस्मृत्या महापुरुषो गोचरम अनुग्रहाय भवतः प्राप्ता वावामिह प्रभो ब्रह्मणयो भगवत भक्तो नावासादिर तुमर्हसि। इत्थं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे स्मृत्या महापुरुषो गोचरम अनुग्रहाय भवता प्राप्ता वाम्नामिह प्रभो ब्राह्मणयो भगवत भक्तो नवसागर तुमर्हसि। हरे कृष्णा धन्यवाद। इत्थं इस प्रकार त्वां तुमको पुत्र शोकेन अपने पुत्र के शोक के कारण मग्नम डूबे हुए तमसि अंधकार में दुस्तरे ना पार कर सकने योग्य अतत अहरम तुम जैसे पुरुष के लिए उपयुक्त नहीं है अनुस्मृत्या स्मरण करने के महापुरुष श्री भगवान गोचरम जो ज्ञान संपन्न है अनुग्रहाय अनुग्रह करने के लिए भवता आपके ऊपर प्राप्तो आए हैं आवाम हम दोनों यह इस संसार में प्रभो हे राजा ब्रह्मण्य जो परम सत्य को प्राप्त हैं भगवत भक्तः श्री भगवान का भक्त ना नहीं अवासादितुम शोक करने के अर्हसे योग्य हो। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे राजन, तुम श्री भगवान के परम भक्त हो। भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं। जो अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है, जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महापुरुष का अर्थ है सिद्ध भक्त तथा श्री भगवान दोनों हैं। महा का अर्थ है परम तथा पुरुष का अर्थ है पुरुष या व्यक्ति। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वह महापौरुषिक कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुषिक कहा गया है। भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का गीत है, तांदेर चरण सेवी भक्त सनेवास, जन्मे जन्मे है ऐ अभिलाष। भक्त को चाहिए कि परम भक्त की संगति में रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरानुसार ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के परम गोस्वामियों के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश को ग्रहण करें। यह तांदेर चरण सेवी कहलाता है। गोस्वामियों के चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सनेवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को ना तो लाभ की कामना करनी चाहिए ना हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराज चित्रकेतु अपने पुत्र के भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहा है, तो वे अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे, जिससे वह अविद्या से बच सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्राह्मण्य है। कभी कभी श्री भगवान की प्रार्थना नमो ब्राह्मण देवाय के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। अतः यह श्लोक बताता है, ब्राह्मण्यो भगवत भक्तो नावासाद तुम अहसि। यह परम भक्त का लक्षण है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं। वह तो सदैव बद्ध जीवन से परे है। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में जो है इन दो श्लोकों पर हम चर्चा कर रहे हैं, बट इससे पहले एक श्लोक था जहां से श्री अंगिरा मुनि ने बातचीत शुरू की। श्रृंगिरी उवाच, इससे पहले श्लोक उसमें प्रपट नहीं था तो इसलिए पढ़ा नहीं गया। उसमें अंगिरा मुनि कहते हैं, अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अंगिरा निरपहा एष ब्रह्म सूत साक्षात नारदो भगवान ऋषि। अंगिरा जी ने कहा, हे राजन, जब तुमने पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। मैं वही अंगिरा ऋषि हूं जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया है। ये जो तुम्हारे पास है भगवान ब्रह्म के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद है। और इसके बाद आज इन श्लोक में कह रहे हैं कि हे राजन, तुम श्री भगवान के परम भक्त हो। भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं, जो अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान के से संपन्न है, उनके लिए इस प्रकार की भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें साफ साफ जो है अंगिरा मुनि एक शोक से व्याप्त पिता को, जिनकी 1 करोड़ पत्नियां तो हैं लेकिन संतान नहीं थी, और जब संतान हुई, पहले तो संतान ना होने का बहुत बड़ा दुख कि कैसे शक्ल दिखाएं, लोग क्या बोलेंगे, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, ये सब मैंने किसके लिए कमाया है, तो पिता के या माता के हृदय में बहुत बड़ा दुख होता है जब संतान ना हो। तो चित्रकेतु महाराज भी जो है बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। एक सब कुछ है उनके पास लेकिन संतान नहीं है, इसलिए दुखी है। देखा जाता समाज में भी किसी के पास सब कुछ हो लेकिन कहीं कुछ ऐसी कमी हो तो उस कमी को लेकर वो पूरा जीवन परेशान रहता है। लेकिन जिन लोगों के पास संतान है और धन नहीं है तो धन को लेकर परेशान रहते हैं, जिनके पास धन है लेकिन कुछ और सुविधाएं कम हैं तो उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए परेशान रहते हैं। चौथे स्कंद में भी इसी प्रकार का प्रसंग आता है, जहां पर राजा वेन और रंग के विषय में जब उनकी भी संतान नहीं थी तो उन्हें एक संतान प्राप्त हुई बहुत मुश्किल से, लेकिन वो इतनी खतरनाक थी या इतने असुर टाइप की थी कि माता पिता को तो वैसे ही वैराग्य आ गया। और जैसे कई बार घर में बच्चों से परेशान माता पिता बोलते हैं, बच्चों की परेशानी से परेशान होकर गुस्से में या मजाक में कि इससे तो क्या होता, क्या अच्छा था हैं? बोलते हैं ना, फेमस डायलॉग है ना, हर एक परिवार में होता है, एक दो बार तो बोलते ही लोग, कई बार ज्यादा भी बोलते हैं। तो जब बच्चों की द्वारा दी जाने वाले दुखों से माता पिता खूब परेशान होते हैं तो इस प्रकार का जो है शास्त्रीय कोट है ये भी इससे तो ना होता तो अच्छे थे, क्योंकि जो उनके माता पिता थे तो उनको भी जब लगा कि हमारा बेटा तो हर जगह इस तरह की नादानियां कर रहे हैं, बच्चों को मार देता है और ये सब करता है, तो उनको भी लगा ये तो बहुत दुख दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, इससे तो क्या होता कि हमारी संतान ना ही होती तो अच्छा। तो इसमें एक चीज और भी बता रहे हैं कि कई लोग तो इसलिए परेशान होते हैं कि संतान नहीं है, और ऐसी संतान अगर निकल जाए जो कि बिगड़ी हुई है काफी, तो माता पिता वैसे विचलित रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। और अगर ऐसी संतान मिल जाए जो बहुत अच्छी है तो बाहरी रूप से देखने में बहुत अच्छा है कि बहुत अच्छी संतान है, लेकिन नुकसान क्या है? अच्छी संतान का क्या नुकसान है? फायदे फायदे ना। हाँ, अच्छी संतान से जो है व्यक्ति मोह से ग्रस्त हो जाता है, उसका जो बंधन है इस भौतिक जगत से और बढ़ जाता है, और वो बंधन उसको मृत्यु के पश्चात भी पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करता है। तो दोनों दृष्टि में देखा जाए तो अच्छी सिचुएशन किसकी है? जो संतान के दुर्व्यवहार से दुखी होकर किस तरह की कामना कर रहा है कि ना होती तो अच्छा था, ये भौतिक जगत दुखी है, परेशान हो रहा हूं मैं, मुझे क्या करना चाहिए, अब किसकी शरण में जाना चाहिए? भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो कई बार दुख और कष्ट जो हैं हमें को इसलिए दिए जाते हैं, हम समझ जाएं कि ताकि हम लोग भगवान की ओर उन्मुख हों। यहां पर चित्रकेतु के पास भी कोई संतान नहीं थी, लेकिन जब एक संतान दी गई, अंगिरा मुनि कह रहे मैं आया था आपके पास और आपने मुझसे मांगी थी, मैंने दी, तो उससे पहले का जो दुख था, दुखमय जीवन था, वो आपका समाप्त हो गया संतान को प्राप्त करते ही, उस दुख के लम्हों को तुम भूल गए। लेकिन यही बच्चा क्या बना? सुख का कारण बना, और सुख के कारण बनने के तुरंत बाद अब ये फिर से महान दुख का कारण बन गया। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ पत्नियों में किसी एक के द्वारा ही संतान उत्पन्न हुई। जैसे बताया जाता है कि इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने दुखों से तो परेशान है ही, आत्मिक कलेश तो उसको है ही, लेकिन उससे ज्यादा वो आदि भौतिक कलेशों से परेशान रहता है। आत्मिक कलेश में उसको इतना परेशान कई बार नहीं करते, क्योंकि कई बार उसका भौतिक कलेश जो है कारण बनता आत्मिक कलेश का, कि उसकी थाली में मेरी थाली से ज्यादा क्यों है ना, द्वेष भावना, ईर्ष्या बढ़ जाती है। तो एक संतान एक पत्नी से होने के बाद बाकी सभी पत्नियां, कितनी बची? 99,99,999 करके जितने भी हैं, उन सबका जो है उनसे मोह खत्म हो गया राजा का, अब उसी पत्नी से था जिससे संतान है, तो सबको ईर्ष्या द्वेष तो हो गई। तो उन्होंने मिलकर क्या किया, उस बच्चे को मार दिया। और अब जो दुख था राजा का, ये दुख उस संतान ना होने के दुख से कई गुना ज्यादा था। अंगिरा मुनि और नारद जी पहुंच गए सांत्वना देने के लिए, एक बार एक व्यक्ति भी इसी प्रकार अपने बेटे के सर अपनी गोदी में रखकर खूब रो रहा था। उसके बेटे ने प्राण छोड़ दिए थे। एक साधु वहां पर आए, पंडित जी। उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो? कहते, मेरा बेटा खूब दहाड़ मारकर। उन्होंने भगवद गीता से ज्ञान दिया, जैसे अंगिरा मुनि जी दे रहे हैं, शोक नहीं करना चाहिए, इस संसार में लाभ और हानि से व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए। यहां पर सब लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, देह जो है कुछ समय के लिए मिलता है। उसको सांत्वना पहुंची, कहा नहीं करना चाहिए हमें, सब टेम्परेरी है। सांत्वना मिली, थोड़ा ठीक हुआ। कुछ समय बाद जब वो ट्रेवल कर रहा था तो उसी साधु के घर के पास से निकल रहा था, तो रोने की आवाजें आ रही थी। तो देखा मुड़कर, तो क्या देखते हैं कि वो साधु रो रहे हैं और अपनी बकरी का सर अपनी गोदी में रखकर रो रहे हैं। उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों रो रहे हो? कहते, मेरी बकरी जो है रोज दूध देती थी, जो है आज इसने शरीर त्याग दिया है। कहते, बट महाराज आपने जो मुझे समझाया था कि संसार में सब जो है नश्वर है, सब कुछ चला जाएगा, सब छूट जाएगा, आप ही ने तो बताया था और आज आप ही शोक करके रो रहे हैं। कहते, अरे भाई आपने ही मुझे संदेश दिया था। कहते, और मेरा जब पुत्र मरा था तब आपने ही संदेश मुझे दिया था। कहते, भाई वो तुम्हारा पुत्र था लेकिन ये बकरी तो मेरी है। मुझे दुख हो रहा है, मेरे से पूछो कितना दुख हो रहा है। तो कई बार प्रचार करते समय लोग बहुत अच्छी फिलॉसफी का जो है प्रयोग करते हैं, और प्रचार का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति उस चीज को अपने जीवन में भी उतारे। जो चीज दूसरों को समझा रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है। जैसे एक बार एक पिता ने अपने बच्चे को लेकर गए कि इसको मीठा खाने का जो है शौक है, तो इतनी दूर गए, 6-7 पहाड़ियां क्रॉस कर हैं, महाविलम टाइप। तो साधु मिले, उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहिए? कहते, सर इसको मीठा खाने का बहुत शौक है। कहते, ठीक है, तो क्या करें? कहते, कुछ नहीं, अगले हफ्ते फिर ले आना। तो अगले हफ्ते फिर गए तो उन्होंने केवल इतना ही बोला कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, ठीक नहीं है, दांत खराब हो जाएंगे। कहते, ये तो पिछले हफ्ते भी बोल सकते थे आपने, को इतनी पहाड़ियों को टपवाई अपने। तो उन्होंने बोला, मेरे को भी थोड़ी सी आदत थी मीठा खाने की, अब मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, तो मेरे को लगा कि जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तो मैं इसको कैसे समझाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि फिलॉसफी का एप्लीकेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए। यहां पर ऐसा नहीं कि अंगिरा मुनि और इनके बारे में बताएं, लेकिन हाँ ऐसा जरूर है कि नारद मुनि जो आज प्रश्न करने आए हैं, बट अपने पिछले जन्म में हम भी जानते कि ये भी दासी पुत्र ही थे, और जिस प्रकार आज ये अपना संग देकर महाराज चित्रकूट केतु को शोक से उभार रहे हैं, उसी प्रकार जब ये एक दासी पुत्र थे तो इनके परिवार में भी महान वैष्णव परमहंस लोग आए, जिनकी इन्होंने सेवा की, उनका संग प्राप्त किया, उनसे कथा इत्यादि सुनी, मार्गदर्शन प्राप्त किया और भक्त बने। तो वही चीज आज नारद मुनि जो हैं और अंगिरा मुनि जो हैं इन चित्रकेतु के साथ कर। और किसी भी व्यक्ति के लिए अर्जुन की स्थिति भी यही थी, युद्ध स्थल पर खड़े थे, युद्ध की ही इच्छा से आए थे, बाण लेकर घोड़े पर सब कुछ तैयारी थी, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन की बात आई कि अब शुरू करना है काम, तो उन्होंने कहा पहले मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में लेके जाए। वहां पर जाने के बाद क्या देखते हैं, अरे ये तो सब अपनी फैमिली वाले हैं। वही पहले नहीं मालूम था कि सब आएंगे, हाँ मालूम था, बट क्या अब क्या है, अब क्या है कि वो सिचुएशन सामने है, अपने घर के लोग दिख रहे हैं, इनके हाथों में खेले बड़े हमारे गुरुजन हैं, हमारे भाई बहन हैं, और एक भूमि के टुकड़े के लिए क्या कोर्ट केस करना, छोड़ देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, है ना। गांडीव नहीं उठाया जा रहा था, शोक से व्याप्त थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा, भगवद गीता का ज्ञान, और कहां से शुरू किया, शरीर और आत्मा के अंतर से। जैसे ही हम लोग शरीर और आत्मा के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं, हमारे जितने भी प्रकार का मोह है, दुख है, तकलीफ है या मानसिक तनाव है, हम उसे तुरंत जो है रिलीव महसूस करते हैं। कारण क्योंकि अभी तक हमारा सोचना, विचार करना, सारी की सारी चीजें देहात्म बुद्धि के कारण है। हम लोग अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए इस शरीर से संबंधित सारी समस्याएं हमें अपनी लगती हैं। अन्यथा हम लोग आध्यात्मिक चिन्मय स्फुलिंग हैं, भगवान श्री कृष्ण के एक अंश। हम लोग जैसे कल सोच रहे थे, बात कर रहे थे, उसमें ये सेंटेंस था कि बिकॉज आई एम अ स्पिरिचुअल लिविंग बींग, आध्यात्मिक चिन्मय स्फुलिंग हूं मैं, बट हो क्या रहा है मेरे साथ, भगवान की बहिरंगा शक्ति, इन्फीरियर एनर्जी, आई एम बींग हैरास्ड बाय इन्फीरियर एनर्जी, भौतिक कलमश, भौतिक प्रताड़ना दी जा रही है उस स्पिरिचुअल बींग, उसको कुछ कर नहीं सकते हम, लेकिन उस देह का और इस प्रकृति के द्वारा दिए गए शरीर के द्वारा हम लोग इस संसार में नाना प्रकार की उथल पुथल के बीच में फंसे हुए हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक व्यक्ति को एक ऐसी जगह डाल दिया जाए जहां पर कि नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही है, मानसिक तनाव, एक कमरे के अंदर बंद किया जाए और सब लोग पत्थर मार रहे हैं, ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति देहात्म स्तर पर है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब जिस प्रकार अंगिरा मुनि उनको ये ज्ञान दे रहे हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। और दूसरे अध्याय से जब बातचीत शुरू करी तो पहले ही सबसे पहले शरीर और आत्मा के भेद सांख्य फिलॉसफी को समझाया। इसका क्या फायदा होता है? इसका यह फायदा है कि जैसे हम लोग जिस भी स्तर पर हैं, जहां पर भी हैं, तो हम सब सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम लोग भी अभी अभी किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं, शारीरिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, मानसिक तनाव से कहीं ना कहीं ग्रस्त हैं, किसी न किसी तरह के कई न कई प्रकार के लोगों से हमारी ईर्ष्या द्वेष है, कुछ लोगों से हमारी लाइकिंग है, तो कहीं ना कहीं हम सब लोग इन सब चीजों से अफेक्टेड हैं। और यही सब चीजें हमारे जीवन को क्या करती हैं, हमारे जीवन में उतार चढ़ाव लाती हैं, यह दुखी करती है, यह परेशान करती है, यह सोकल्ड सुख देती है। और सभी लोग इन सब से ग्रस्त हैं, लेकिन अगर व्यक्ति इस आत्मा के धरातल पर आने का प्रयास करे, देखिए बहुत आसान है ये समझना कि हम हॉल के अंदर बैठे हैं, हॉल और हम अलग अलग हैं। बहुत आसान है ये समझना कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूं। बहुत आसान है ये समझना कि मैं कपड़ों के अंदर हूं, मैंने कपड़े पहने हूं। लेकिन ये समझना कि मैं शरीर के अंदर हूं, ये थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये ग्रंथ, इसलिए भगवद्गीता, इसलिए भक्तों का संग दिया गया है, ताकि हम लोग इस शरीर में रहते हुए ये रियलाइज कर पाए कि हम इस शरीर से भिन्न हैं। हमारी कंडीशनिंग इतनी ज्यादा है कि अगर हम जिस जाति से बिलोंग करते हैं, कई बार हम पंजाबी खत्री हैं, कई बार हम लोग अग्रवाल हैं, कई बार जाटव हैं, ऐसे सब होती हैं खास। अगर बेशक हम आध्यात्मिकता को अपनाकर ये रियलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, हमारी एक ही कास्ट है, क्या दास दासानुदास प्रयास कर रहे हैं ये समझने का। लेकिन जैसे ही अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जिस कास्ट से मैं बिलोंग करता हूं या करता था, उस कास्ट को कोई कोसे, मतलब उसको कोई गालियां दे, इस तरह के लोग तो सारे ऐसे होते हैं, तो अचानक दिल पर झटका लगेगा, ये मेरी जाति को क्यों क्या कर रहे हैं, गाली क्यों दे रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं। क्योंकि ये संस्कार इतना गहरा है जाति का, देह का, ये निकलता नहीं है बहुत आसानी से। लेकिन नित्यम भागवत सेवया, रोज अगर कोई भी चीज, क्योंकि सक्सेस का मतलब ही यह है कि कोई भी चीज आप करें रोज करें, इसलिए हम जब रोज करते हैं, वंस ना वीक नहीं करते, हम डीटी वर्शिप रोज करते हैं, वंस ना मंथ नहीं करते, हम लोग भागवतम को कहा नित्य सेवया, रोज करते हैं, कोई फेस्टिवल नहीं है, मतलब 7 दिन के लिए नहीं करते खाली, इसके बाद विराम दे, ऐसा नहीं। तो किसी भी चीज में अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस सफलता को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है उसको नियमित रूप से करना पड़ेगा, होल हार्टेडली करना पड़ेगा। आज जिन असुरों की हम बात करते हैं, ये लोग भी एक दिन में असुर नहीं बने, उन्होंने खूब प्रैक्टिस की, बचपन से लोगों को उल्टा सीधा बोलना शुरू करा, मारना शुरू करा, तो धीरे धीरे जो है नित्य सेवा करी, तब जाके बड़े असुर बने।
एक ही दिन में कोई बड़ा डाकू नहीं बनता, एक ही दिन में ऐसा काम नहीं होता, प्लानिंग चलती है, रोज सोचना पड़ता है, रोज विचार करना पड़ता है, टीम इकट्ठी की जाती है, तब जाके कोई बड़ा अटैक किया जाता है, तब सफलता मिलती है। उसी तरह ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अचानक हम माला पकड़ें या धोती कुर्ता पहन लें तो हमारे सारे नर्स समाप्त हो जाएंगे? एकदम नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? इस ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा। और यह समझने के बाद कि हम लोग इस शरीर नहीं, हम आत्मा है, लेकिन आत्मा क्योंकि भगवान का अंश है, इसीलिए भगवान ने आत्मा का ज्ञान देने के बाद फिर कर्म की ओर लेकर गए, क्योंकि आत्मा कभी खाली नहीं बैठता। आत्मा आत्मा बोलकर हम हर समय खाली नहीं बैठ सकते, जैसे ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं तो देखते हैं कि भौतिक प्रकृति तो बेकार है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, हम तो स्पिरिचुअल बीइंग हैं, क्या फायदा, तो वो अपने को हर चीज से निवृत्त कर देते, लेकिन उसके आगे नहीं जाते। कहां? एक्टिवनेस पर, कि हां इसका बात क्या है, कर्म है। तो भगवान फिर निष्काम कर्म का ज्ञान देते हैं, फिर आगे ध्यान योग ज्ञान योग की बात करते हैं, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हम लोगों को इसी देह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यही देह है जो हम लोगों को बार बार प्रेरित करती है, या हम लोगों को बार बार शरीर देने की ओर फोर्स करती है। यही देह से हम लोग हमेशा जन्म बुढ़ापा बीमारी मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी नरोत्तम दास ठाकुर जी की एक सॉन्ग से, जो तांदेर चरण से भी भक्त सनेवास, जन्म जन्म है यही अभिलाष, तो फिर हमारा जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद हमारा लक्ष्य भौतिकता में लिप्त होना नहीं रहता, इस भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति या एंजॉयमेंट की तरफ नहीं रहता, फिर हमारा पूरा का पूरा विजन बदल जाता है कि हां अब तो हमें भगवान की ही सेवा करनी है, अब तो हमें भगवान के ही चरणों में हर प्रकार से जो भी हमारे पास है उसे युक्त करना है भगवान। इसलिए उनका सारा कर्म सारी क्रियाएं बदल जाती हैं, उनका विचार बदल जाते हैं, उनका सोचना खाना पीना उठना सब डिवोशनल हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस से व्यक्ति बहुत आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन के लिए बनना चाहिए, जो होना चाहिए। यहां पर महाराज चित्रकेतु शोक कर रहे हैं, और तब इन आचार्यों ने वहां पर आकर उनको शिक्षा दी। इससे पिछले श्लोक जिस दिन गुरु महाराज थे यहां पर, उसके प्रपट में भी और अनुवाद में भी यही बताया जा रहा था कि किस प्रकार जो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी है, जिन्हों को ये ज्ञान है, तो वो दूसरों को देखकर बहुत दुखी होते हैं, उन लोगों को जो मटेरियली एनग्रॉस्ड हैं, जो इस संसार में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन को इन्हीं सब चीजों में बिता रहे हैं। तो आउट ऑफ कंपैशन उनको बहुत हृदय में, उनका हृदय विदीन हो जाता है ऐसे लोगों को देखकर, और फिर उनसे चुप नहीं रहा जाता, वो प्रचार करते हैं, वो निकल पड़ते हैं लोगों को अपना संग देकर उनको शुद्ध करने के लिए, ताकि ऐसे लोग जिन लोगों को मालूम नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है, जो अपने इंद्रियों को, या जैसे दूसरे शब्द बोले इंद्रियों के तर्पण के द्वारा आत्महत्या कर रहे हैं, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि हम लोगों का शत्रु वो नहीं जिसने हमारा पैसों में नुकसान किया, हम लोगों का शत्रु वो नहीं जिसने हमारी प्रॉपर्टी छीन ली, हम लोगों का शत्रु ये सब लोग नहीं है, हम लोगों का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु वो भी नहीं जिसने हमें चीट कर दिया, हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो भी हमारे शत्रु हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, हमें लगता नहीं है तो कमाल है, दो रसगुल्ले तो मैं इसी को डालूंगा लाइन में उसको आगे लगा दूंगा नहीं नहीं, ये भी हमारे क्या हैं, ये दूसरे खतरनाक टाइप के शुभचिंतक हमारे। तो वास्तव में हमारे सबसे बड़ा शत्रु बाहर से कोई नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु हम ही हैं, सबसे बड़े शत्रु अपने आप के। कैसे हम शत्रु? क्योंकि बाहर के शत्रु तो छोटे छोटे शत्रु हैं, लेकिन हम लोगों ने कसम खा रखी है कि इस शरीर को, अर्थात ये जो आत्मा अंदर जो मैं हूं, इसको भगवत धाम जाने नहीं दूंगा। कोशिश करें जाने की, मैं देखता हूं कैसे जाएगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भगवत धाम जाने के लिए तो मुझे सेल्फ रियलाइज होना पड़ेगा, और मुझे कहां लगना पड़ेगा? डिवोशनल सर्विस में लगना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सबसे मित्रता करनी होगी, सब में कृष्ण को देखना होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कैसे जाने दूं मैं अपने आप को? ऐसे मैं तो नहीं देखता। तो जबरदस्ती हम लोग अपने सबसे बड़े शत्रु बने हैं बाहर वाले का, तो क्योंकि जिससे भी शत्रुता होती है या ईर्ष्या होती है उसका हम नुकसान चाहते हैं, है कि नहीं? जब उसको कोई यातना मिलती है, कोई कष्ट आता है, तो हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है, आह आ गया मजा, है ना? उसका हम कुछ बुरा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़े क्योंकि शत्रु हम अपने आप के ही हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा बुरा किसका करते हैं? अपने ही करते हैं, अपने आप को कृष्ण भक्ति में ना लगाकर या आत्म साक्षात्कार ना करकर। देहात्म बुद्धि में रहकर, और इसकी वजह से फिर बाहरी शत्रु बनते हैं हमारे, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे बड़े हम शत्रु अपने आप के ही हैं। और उसी तरह फिर अपने डिपेंडेंट्स, उनको भी नहीं कोशिश करते कि उनको भी रियलाइज कराएं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। उनको भी हम लोग जीवन का लक्ष्य बताते हैं, ये बनना है, वो बनना है, ये बनना है, सारी चीजें बता देंगे, लेकिन असली काम नहीं बताएंगे। लोगों को डर लगता है कहीं हम भक्त ना बन जाए ना? लोग डरते हैं भक्त बनने से, है कि नहीं? माया तो खींचती अलग है, घर वाले भी खींचते, कैसे जा रहे हो आप? बहुत मुश्किल। हम लोग भक्ति करने से, भक्त बनने से डरते हैं कि हम भक्त ना बन जाएं। मतलब भक्त बनने का मतलब, क्योंकि हमने सुना है और देखा है कि जो भक्त होते हैं वो लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर होते हैं जहां पर ना उनको खाने की लालसा रहती है, ना मान सम्मान की लालसा रहती है, जिस भी परिस्थिति में रखो रहते हैं, ना वो क्रिकेट मैच देखते हैं, फाइनल भी नहीं देखते बताओ, और ना ही उनके पास G5 या G7 का मोबाइल फोन होता है। ऐसा भक्त नहीं बनना। क्या फायदा ऐसी भक्ति करके का कि उस व्यक्ति ने इंजॉय नहीं किया, है ना? हम जिस तरह की भक्ति करना चाहते हैं वो कैसी है कि बाहरी रूप से भी अच्छे भक्त दिखे, सबसे महंगा बीट बैग लेके एम्ब्रॉयडरी वाला, उसमें सुंदर सा एक काउंटर भी चमक रहा हो दूर से, और वेल क्रीज्ड प्रेस्ड यूनिफॉर्म और सुंदर तिलक 15-20 मिनट लगाकर, तो ऐसे भक्त। और प्लस ये तो एक्सटर्नल है, लेकिन और क्या है कि मेरे जो सराउंडिंग, जो मेरे लोग हैं मेरे साथ में हैं, और जो मेरे कंफर्ट्स हैं, जो मुझे चाहिए, वो सब होने चाहिए, तब मैं पूर्ण भक्त कहलाऊंगा। अब कंप्लीट डिवोटी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो हर चीज है, वो नई से नई टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, है ना? ग्लोरिफिकेशन है, मैं प्रीचर भी हूं, मैं ये भी हूं, मुझे लोग ऐसे भी जानते हैं, मुझे ऐसे भी जानते हैं, है ना? ये सारी चीजें हैं, और सारी आसक्तियां भी मेंटेन है, और मैं भी ठीक, बस बहुत बढ़िया। ऐसे भक्त सुंदर आ रहे हैं, देखो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे आ रहे हैं, साथ में दो बच्चे हैं, बहुत सुंदर भक्त, सुंदर फैमिली, ऐसा फील। थोड़ा सा भी उसमें ऊपर नीचे कमी पेशगी हो जाए, है ना, बैंक बैलेंस में थोड़ा ऊपर नीचे, बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, तो माला सबसे पहले छूटती है, एसोसिएशन छूटता है, पूछो पूछो कहां हो, बहुत बिजी है आजकल, नहीं आ सकते, तो लक्ष्य बदल जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अच्छे सच्चे भक्त बनने का प्रयास करें। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग के लिए प्रभुपाद जी इतना कुछ बोला करते थे कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन को इतना साधारण रखे, इतना सादा रखे, कि कल को उसे अगर उसको प्राप्त सेवाएं या उसको प्राप्त ऑपुलेंस जो उसके पास है कंफर्ट जोन के लिए, वो जब मर्जी छीना जाए ना, तो उसके हृदय में एक बार भी दुख ना हो। सिंपल लिविंग का मतलब ये, हर चीज से दी गई सेवाओं में कंफर्टेबल व्यक्ति तो हर कोई कर लेते, कंफर्टेबल जोन में बहुत इजी है एग्जीक्यूट करना, बट जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है पहले ही मन बना के रखना चाहिए आएंगी। ऐसी सिचुएशन जब लोग आपका अपमान करेंगे, ऐसी सिचुएशन जब आपको तिरस्कृत करेंगे, ऐसी सिचुएशन जब आपके पास जिस सेवा को आप कर रहे हैं, जिस सेवा से आपकी पहचान है, जिस सेवा से आपको लोग ग्लोरीफाई करते हैं, वो छीन ली जाएगी। ये किसी भी समय छीन लें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तैयार हूं हर उस प्रकार की सेवा करने के लिए या हर उस प्रकार की परिस्थिति के लिए। जैसे हम सेवा की बात कर रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है, मान लो अगर धन से धन है उसके पास खूब, ये एक अच्छा स्टेटस हम समाज में, तो उस स्टेटस से भी वो क्या रहे, डिटैच रहे। अभी छीना जाए या कल छीना जाए या कल को मेरे पास ऐसी स्थिति ना हो और ऐसी स्थिति हो कि मुझे खाली रोटी के साथ नमक, नमक के साथ रोटी खानी पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थितियों में भी हम लोगों को इन ऐसी सिचुएशन पर भी क्या करना चाहिए, इनकी भी कल्पना करते रहना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है मेरे से, तब मेरी क्या सिचुएशन होगी, तब मेरे हृदय की क्या परिस्थिति होगी, तो क्या मैं उस समय पर भी भक्ति कंटिन्यू कर सकूंगा, क्या मैं भागवतम कथा सुन सकूंगा, क्या मैं हरि नाम ले सकूंगा, क्या मैं भक्तों का संग उस समय भी कर सकूंगा, या मैं उस लाइन में खड़ा होऊंगा जहां पर लोग कोसते हैं भगवान को ऐसा होने पर, या अथॉरिटी को कोसते हैं, या ये बोलते कि पॉलिटिक्स बहुत है और मूवमेंट छोड़कर चले जाते हैं, किन में गिनती होगी मेरी। तो पहले ही हमेशा फालतू की आशाएं नहीं रखनी चाहिए कि अभी मैं ये कर रहा हूं, कुछ समय के बाद ये करूंगा, फिर ये हो सकता है। ये सारी आशाएं बहुत बड़ी निराशा देगी। जिस प्रकार कुछ ना होने पर, कोई संतान ना होने पर चित्रकेतु दुखी थे, तो जिस प्रकार का लक्ष्य हमने बनाया भक्ति में, कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा इत्यादि की, किसी पर्टिकुलर उपाधि की, उपाधि ना होने पर दुखी हैं, एंजाइटीज हैं, परेशान हैं, लेकिन वो उपाधि मिलने पर सुख की अनुभूति होती है, यस अब देखता हूं मैं, है? लेकिन वो भी छीना जाएगा, नहीं छीना जा सकता, तब क्या होगा, उससे ज्यादा दुख होगा। तो भक्तों को चाहिए कि वो हर परिस्थिति में, चौथे स्कंद में ही ध्रुव महाराज के प्रसंग में देवता लोग उनकी प्रशंसा करते हुए बोल रहे हैं कि हमें, और इसी प्रसंग में इससे पहले जो है, जब चार कुमार आए उनके पास, ध्रुव महाराज के पास, तो वो उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया ध्रुव महाराज ने, शक्तवि शब्दार भी पृथ्वी महाराज, सॉरी, तो शक्तवि शब्दार हैं और एक राजा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसा व्यक्ति जो कि दूर दूर तक आध्यात्मिकता नहीं है, अज्ञानता में है, इस भौतिक संसार में फंसा हुआ है, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं, कर्मों के बंधन फंसा हुआ है, उसके बावजूद भी ऐसा व्यक्ति जिन्हें जन्म जन्म पाप किया है, ऐसे व्यक्ति कैसे उद्धार हो सकता है। तो पहले तो ऐसे प्रश्न की वो प्रशंसा कर रहे हैं। जब भी एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया जाता है तो वक्ता जो है सबसे पहले उस व्यक्ति की प्रशंसा करता है। कई बार लोग नहीं जानते इसलिए प्रश्न करते हैं, और कई बार जानते हुए भी प्रश्न करते हैं ताकि सब लोगों का फायदा हो सके। तो उसके बाद उन्होंने उसके उत्तर दिया और उस उत्तर में वही सब बोला, क्या कि हमें भक्ति योग का पालन करना चाहिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। व्यक्ति को चाहिए कि वो इसमें लग जाए कॉन्टिन्यूसली, रोज नियत रूप से, नियत। क्या होगा इससे, इस प्रकार की सेवा करते हुए, वैष्णव का संग करते हुए, उसके हृदय की ग्रंथियां खुलने लगेंगी, उसके पाप समाप्त होने लगेंगे और वो शुद्ध हो जाएगा और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकेगा। कितना आसान, ये वो चर्चा कर रहे हैं हम जो ग्रंथों में दिए, जिसे हम पढ़ते हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं यहां बैठ के, हम भी वही कार्य कर रहे हैं, हमारी भी वैसी ही चेतना थी या है, लेकिन हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं जो लिबरेटेड सोल्स ने, भगवान के पार्षदों ने, आचार्यों ने भक्तों को दी ऐसी गाइडेंस कि ऐसा करना चाहिए। तो सब लोग प्रोसेस में है, सब पाइपलाइन में है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस डिवोशनल सर्विस को श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, इन सबको हमेशा नियमित रूप से करें। सफलता तभी है। अगर हम लोग, दिक्कतें कहां हैं? दिक्कतें वहां हैं जहां पर सफलता तो चाहते हैं लेकिन एफर्ट्स पूरे नहीं। सफलता चाहते हैं, एफर्ट्स पूरे नहीं है। अगर सफलता चाहिए तो जो सेवाएं दी गई हैं या जो माध्यम बताया गया सेवा करने का, उसे नियमित रूप से करना शुरू करें। जब हम लोग इस प्रकार करेंगे तो सफलता बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो भक्तों के एफर्ट्स को देखकर उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है तो पूछ। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की पिताए गौर।